तो नेक्स्ट टॉपिक है नमाज़े सफ़र। सफ़र में नमाज़े ज़ोहर, असर और नमाज़े ईशा की चार चार फ़र्ज़ रकतों को दो दो पढ़ना कसर यानी कम करना कहलाता है। बात वाज़े? क्योंकि इन्हीं तीनों नमाज़ों में यानी ज़ोहर, असर और ईशा में चार रकतें थी तीन नमाज़ों में, तो इसको दो दो करते हैं, क्योंकि फ़जर तो ऑलरेडी दो थे और मग़रिब के तीन होते हैं, तो लिहाजा नमाज़े फजर और मगरिब में कसर नहीं है। कसर भी आप समझ गए, उर्दू में भी कहते हैं कसर खाना, कसर लग गई। तो कासीरात तरफ कुरान में हुरों की सिफत आती है, नजरें झुकाई भी, तो कमी करना होता है। ठीक है, जो शख्स इरादा है सफ़र के साथ अपने घर से चले और अपनी आबादी से निकल जाए तो वह रूए शरीयत मुसाफिर है और अपनी फ़र्ज नमाज में कसर कर सकता है। नोट करिए, सफ़र का इरादा, घर से चले गए, आबादी से निकल गए यानी बीच में एक वीराना आ गया, तो आप मुसाफिर हैं। कब, कहाँ, कैसे, वो आगे दलाइल आ रहे हैं। हज़रत अनस की रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला ज़ुहरा बिल मदीनती अरबाम व सल्लल असरा बिज़िल खुलैफती रकअतैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ज़ुहर की नमाज़ चार रकतें पढ़ी और ज़ुल खुलैफा में असर की नमाज़ दो रकतें पढ़ी। अब नोट कीजिएगा ज़रा, यहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी से पता लग जाएगा डिस्टेंस। मदीना में चार पढ़ते थे ना, ज़ुल खुलैफा में दो पढ़ी। अब ज़ुल खुलैफा किधर है? जो लोग उम्रा कर चुके हैं वो तो एक मिनट में पहचान गए होंगे। ज़ुल खुलैफा एक मुकाम का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लिए रवाना हुए तो ज़ुल खुलैफा पहुँच कर नमाज़े असर का वक्त हो गया, आपने वहाँ नमाज़े असर की कसर की। जी, जो लोग उम्रे पे जा चुके हैं और आप अगर मदीना से मक्का की तरफ आते हैं तो ज़ुल खुलैफा वो जगह है जहाँ आजकल एहतमाम से एहराम बांधने और उसकी नियत करने के लिए पानी का भी इंतज़ाम है, बहुत बड़ी मस्जिदें भी हैं वहाँ। विद इन 10 to 15 मिनट आप यहाँ पहुँच जाते हैं मदीना से निकलने के बाद, रश को अगर बाईपास कर दें तो। तो गोया कि सिर्फ 3 मील से आप शुरू कर गए। ठीक है, पहली बात तो ये समझ आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 मील या 3 फरसंग की मुसाफत पर निकलते, अब ये वो 3 मील जो शरई लिहाज से जितना डिस्टेंस है ना उतना होता है, 3 मील या 3 फरसंग तो नमाज दो रकतें पढ़ते थे। पहली दलील ले लीजिए, बुखारी की रिवायत 1089, 1546, 1547 और दूसरी रिवायत सही मुस्लिम की 691 है। ठीक है, इस हदीस में रावी हदीस शोबा ने पूरी ईमानदारी से काम लेते हुए 3 मील या 3 फरसंग कहा है। इसे शक है कि इसके उस्ताद ने 3 मील या 3 फरसंग, फरसंग कहते हैं 9 मील को, इसका बताया। लिहाजा मुसाफिर को चाहिए कि एहतियातन 9 मील पर कसर कर ले। अपनी आबादी की हदूद से निकलने के बाद अगर मंजिले मकसूद 9 मील या इससे ज़्यादा फासले पर हो यानी वाक़े हो तो मुसाफिर कसर कर सकता है। वजाहत भी लीजिए कि शरई 9 मील तकरीबन 22.5 किलोमीटर बनते हैं। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी के साथ सफ़र में रहा। ये सब अकाबिर यानी बड़े लोग चार की बजाय दो रकते ही पढ़ा करते थे। ये रिवायत है जी मुस्लिम 689। यानी हमारे यहाँ कम पढ़ने को बुरा समझते हुए पूरी ही पढ़ते हैं, हालांकि असल अजर सुन्नत के मानने में है। ठीक है, तो सहाबा कराम दो रकते पढ़ते थे। हज़रत याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत उमर से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाती इन खिफ्तुम अन यफ़तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज कसर अदा करो अगर तुम्हें डर हो कि काफिर हमला करके तुम्हें फितने में डाल देंगे। ये कुरान की आयत है, आप अगर देखें तो सूरत निसा 101 है। तो अब यहाँ तो खतरे और अमन की बात थी ना, आज हम अमन में हैं, नमाज कसर क्यों करें? ये सवाल था हज़रत उमर से। तो आपने जवाब दिया, मुझे भी यही ताज्जुब था, मैंने रसूलुल्लाह से पूछा तो आपने फरमाया अमन की हालत में कसर की इजाज़त देना अल्लाह ताला का तुम पर एहसान है, इसे कबूल करो। यानी सवाल करने की क्या जरूरत है, जब अल्लाह के नबी ने कह दिया तो फिर ठीक है। और ये रिवायत देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है 686। यानी आज बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं कसर नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तो दुश्मनों का खौफ होता था, अब वो नहीं रहा। हज़रत उमर कह रहे हैं कि जब तुम्हें अल्लाह ने एक हुक्म दिया और आप अमन में आ गए हो तो भी इजाज़त है, तो तुम इसको कबूल करो। और बाज़ जगह ये तक आता है कि ये अल्लाह का तोहफ़ा है, और जिस तरह अल्लाह ताला को अपनी पाबंदियाँ लगाना और उसको मानना पसंद है, इस तरह अल्लाह की दी हुई जो कह लीजिए कि रिलैक्सेशंस हैं, उससे फ़ायदा उठाना भी नेकी है इंशाल्लाह। हारिसा बिन वहब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मीना में कसर नमाज पढ़ाई, हालांकि हम तादाद में बहुत ज़्यादा और पुरअमन हालत में थे। साहबा के देखिए दलील लेने का अंदाज़ क्या होता है, अल्लाह के नबी का वो अमल जो वो अपनी आंखों से देख चुके थे। और ये रिवायत है सही बुखारी की 1083 और इसी तरह से 1656, और मुस्लिम की रिवायत है 696। अब आप दोनों रिवायतों से देखें मीना कितनी दूर है। आज भी जब हम मक्का से मीना की तरफ आते हैं तो विद इन आधे घंटे हम मीना और मुजदलिफा के करीब होते हैं। कसर की हद क्या है? अगर कोई मुसाफिर किसी इलाके में मुतरद्दद हो, मुतरद्दद मीन शक, कि आज जाऊंगा तो कल, तो नमाज़े कसर करता रहे चाहे कई महीने लग जाएं। जी, तो ये जो कोरोना वायरस है, मुझे तो लग रहा है ये हमारे लिए होगा। चंद दिन कई महीनों में गुजर गए ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से था। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि पहले ही पता है टिकटें भी बुक होती हैं जो भी हैं, तो वो जब तरद्दुद ख़त्म हो जाए तो फिर आप पूरी पढ़ेंगे, ये मुराद है। अबू जमरा नसर बिन इमरान रहमहुल्ला से रिवायत है कि मैंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से सवाल किया कि हम गजवे की गरज से खरासान में तवील क्याम करते हैं, क्या हम पूरी नमाज पढ़ें? खरासान नाम की जगह पे गए, गजवा था, पता नहीं कब तक जंग चलेगी, तो उन्होंने फरमाया 2 रकते ही पढ़ा करो, ख्वा तुम्हें किसी जगह मुतरद्दिद मुसाफिर की हैसियत से 10 साल क्याम करना पड़े। ये रिवायत है अल मुसनफ इब्ने अबी शैबा जिल 2 की 210, और हदीस नंबर है 8202। एक और नुस्खे में जिल 2 है, पेज 453-54 है, और सनद भी सही है। ठीक है, क्या पता चला? अभी तक की बात को ज़रा सा आगे देख लीजिए। अगर 19 दिन तक ठहरने का इरादा हो तो नमाज में कसर करें, अगर 19 रोज़ से ज़्यादा मुद्दत तक ठहरने का इरादा हो तो फिर पहले ही दिन से पूरी नमाज पढ़नी चाहिए। अब ये जुमला, इसकी वजाहत लीजिए, इसके बारे में इख्तलाफ है। एक मसलक तो यही है जिसका इजहार ऊपर किया गया कि मुसाफिर 19 रोज़ तक कसर कर सकता है, दूसरा मसलक 14 दिन का भी है, और तीसरा मसलक 3 दिन का है। अब देखिए, जिनका 19 और 14 दिन पे इत्तफाक है तो उनका ऑटोमेटिकली 3 दिन पे तो इत्तफाक हुआ ना, राइट? 3 दिन पे सबका इत्तफाक है, 14 दिन पे 14 दिन वालों का भी है, और 19 दिन वालों का भी है क्योंकि 14 पहले आता है। हाँ, 19 पे सिर्फ एक का इख्तलाफ है, एक का है ना अमल, तो फिर सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी राय हुई? 3 दिन की। तो बस यही राय जो हदीस को प्रेफर करते हैं किसी के कॉल पे, वो फिर इसी को इख्तियार करते हैं कि फिर 3 दिन में ये काम होगा। और दलील देख लीजिए, एक पूरा टॉपिक है बलूगुल मराम, अगर आप बुक ले लें, और उसमें 421 425 नंबर के हदीस में इसकी पूरी डिटेल्स मौजूद है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर मक्का में 19 दिन क़याम किया और कसर करते रहे। ठीक है, इब्ने अब्बास ने फरमाया अगर हम सफ़र में कहीं 19 दिन इकामत करेंगे तो हम कसर करेंगे, अगर 19 दिन से ज़्यादा इकामत करेंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। रिवायत सही बुखारी की है 1080। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ अमल क्या हो रहा है। आप सारी नमाज माशाल्लाह पढ़ने के करीब हैं, राजे और मरजूह, एक मोर एविडेंट एक लेस एविडेंट, एक के दलाइल ज्यादा एक के कम, इट्स ओके। एक दूसरे की राय का एहतराम कीजिए, हराम को तो छोड़िए, कबायर को तो छोड़िए, शिर्क को तो निकालिए, बिदात से तो पीछे हो, उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं। हम इन बातों को बुनियाद बनाकर पिछली चीज़ों को टच किए बगैर झगड़े शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे दिल खोल दे, और ख़ुद भी दुआ किया करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह जो राय या जो अमल नबी सल्लम के अमल से ज्यादा करीब है, मुझे उसकी तौफीक अता फरमा। ये सवाल जवाब वाली बातें ही नहीं होती, क्योंकि ये कभी नहीं हल हुए, आज तक ना हुए, आपसे कैसे हल हो जाएंगे। आपने पढ़ लिया, बुक आपके सामने है, हदीसों को जाके चेक कीजिए रियल रिसोर्सेज से, फिर बस खत्म। आप वो अमल करें जो आपको अच्छा लगता है। जो नहीं मान रहे, जिन्होंने नहीं इस बात को पढ़ा, आप उनसे बहस ना करें, कभी नमाज के मौजू पे बहस ना करें। अगला गुनाहगार होगा और आप उसको गुनाहगार करने में मददगार हो जाएंगे। चलिए, सफर में अजान दी जाएगी कि नहीं, और जमात होगी या अकेले अकेले पढ़ेंगे? मालिक बिन हुरैरस रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं, हम दो आदमी, मैं और मेरा चचा जात, नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया, जब तुम सफर पर जाओ तो अजान और इकामत कहो, फिर तुम में जो बड़ा हो वो इमामत कराए। बुखारी की रिवायत है 6:30। तो उम्र के बड़े की बात है इसमें, यानी ये एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। आगे आप देखेंगे कहीं ऐसा भी आता है कि जिसको कुरान ज्यादा याद हो वो कराए। तो इसमें उनजिलो नास मनाजिलहुम, लोगों को उनके रुतबे के मुताबिक इज्जत दीजिए। सफर में दो नमाजें जमा करना, यहाँ अभी तक जो बात है ना, इसको कसर कहते हैं, ठीक है? आप जमा देखिएगा ये क्या होती है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौराने सफर में जोहर असर और मगरिब इशा को जमा करते थे, यानी जोहर के साथ असर या असर के साथ जोहर, और मगरिब के साथ ईशा या ईशा के साथ मगरिब जमा करते थे। और बुखारी की ये रिवायत है 1107, और मुस्लिम 51 में 705 नंबर की हदीस है, ठीक है? दो नमाजें इकट्ठी कर लेना, एक नमाज के वक्त में दूसरी नमाज को मिलाकर पढ़ना जमा कहलाता है। जमा की दो सूरतें हैं, जमाए तकदीम, वो क्या है, वक्त से पहले। तकदीम देखिए, कदम यकदमो, जोहर के वक्त में नमाजे जोहर के साथ असर का पढ़ना, यानी अभी असर का वक्त नहीं हुआ लेकिन जोहर का हो गया है, तो असर को वक्त से पहले पढ़ लेना, और मगरिब के वक्त में नमाजे मगरिब के साथ ईशा की नमाज पढ़ना, ठीक है? दूसरी है जमाए ताखीर, मौखर से पोस्टपोन, असर के वक्त में नमाजे असर के साथ जोहर और ईशा के वक्त में नमाजे ईशा के साथ मगरिब की नमाज पढ़ना, ठीक है? सहूलत है, वक्त एक का हुआ तो अगली भी पढ़ लीजिए, और अगर अभी रुकना या स्टॉप ओवर लेना मुश्किल है तो फिर वो करें। और एक बात, यहाँ एक जनरल रूल अभी समझ लें, इस्लाम में सफ़र बामकसद होते हैं, इंसान किसी न किसी मकसद की वजह से सफ़र करता है। हुक्म क्या है कि सफ़र कीजिए, काम पूरा हो तो जल्दी से वापस आ जाएं। अजाब के एक टुकड़ों में से टुकड़ा कहा गया हदीस में सफ़र को, और अब तो बाकी सफ़र इतने ही मुश्किल हो गए इन दिनों में, ठीक है? अब काम करने में अगर बार बार बीच में रुक कर, और अगर नमाज में जमात से पढ़ने वाली शर्त ही कायम रखी जाएगी, तो हो सकता है एक दिन का काम 2 दिन में ना हो, तो अल्लाह ताला ने आपको तोहफा दिया है। आम दिनों में जो काम आप कर रहे होते हैं, जब आपके कोई मुश्किल मराहल, कोई ऐसे हालात आते हैं, तो वो काम फिर अल्लाह ताला पिछले वाला ही कबूल कर लेते हैं, ठीक है? इसकी दलील सुन्नत से पढ़ लेते हैं कि कहाँ आपने बाकी जमा तकदीम या ताखीर की कि ना की। मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि गज़वे तबुक के मौके पर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते, अब नोट कीजिएगा, सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू किया, यानी अभी जोहर का वक्त नहीं हुआ, तो जोहर को मौखर करके असर के वक्त में नमाज असर के साथ जमा कर लेते। अगर सूरज ढलने के बाद सफ़र शुरू करते तो जोहर और असर को उसी वक्त, यानी जोहर के वक्त में अदा फरमाते। इसी तरह अगर सूरज ग़ुरूब होने से पहले सफ़र शुरू करते तो मगरिब को मौखर करते, क्योंकि फ़ौरन ही स्टॉप लेने की बजाय थोड़ा सा सफ़र करके स्टॉप लिया जाए तो इंसान थकता भी कम है, तो ईशा के वक्त में नमाज ईशा के साथ पढ़ लेते। और अगर सूरज ग़ुरूब होने के बाद सफ़र शुरू करते तो नमाज मगरिब और ईशा को मगरिब ही के वक्त पढ़ लेते। ये रिवायत है जी अबू दाऊद की 1220, और तिरमिज़ी में 553, 554, और इब्ने हब्बान में 549। हज़रत मास बिन जबल वाली हदीस की तायद इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा की हदीस से होती है, जिसे इमाम बहकी ने रिवायत किया, बयान किया और इसे सही कहा। और इस बारे में इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा और हज़रत अनस रदी अल्लाहु अन्हु से भी रिवायत मरवी है। ये है बुखारी में التقصير حدیث 1091 اور 1111 اور 1112 اور صحیح مسلم میں 703 اور 704 ہے. خلاصہ کیا نکلا جس پہ آج ہم رکھیں گے؟ کہ سفر میں قصر بھی جائز ہے تھوڑا کرنا. اور قصر کیا ہے؟ فجر، ظہر اور عشاء کے چار فرضوں کی بجائے دو دو فرض پڑھ لیے جائیں، اور مغرب اور فجر میں قصر نہیں، وہ دو اور یہ تین ہی پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنی دور جا کر کریں گے؟ 3, 14 اور 19 تینوں کی روایتیں ہیں. دیکھیں نا، یہ نہیں کہا گیا کہ 19 والی ضعیف ہے، کیونکہ وہ ضعیف نہیں ہے. تو یہ نہ سوچئے گا کہ جس بات کو عمل نہیں کرنا لوگ اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں. یہ بڑی جرأت کی بات ہے، علم والوں کی یہ باتیں ہیں، کوئی آپ کی میری ایسے ہماری اپنی خواہشات نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو 3 والی سب سے اسٹرانگ رائے ہے، 14 والی اس سے کم، اور 19 والی سب سے کم. کیوں؟ 3 والی کو تینوں مانتے ہیں، 14 والی کو دو طرف سے مانتے ہیں، اور 19 والی کو ایک ہی طرف سے مانتے ہیں. پھر ہم نے جمع پڑھی، جمع سفر میں قصر بھی اور جمع بھی. تو ظہر کو عصر سے اور مغرب کے ساتھ عشاء کو ملانے کو جمع تقدیم کہتے ہیں، یعنی عصر اور عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے جمع کر لی. اور ظہر نہ پڑھی لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھی، مغرب نہ پڑھی اور لیٹ کر کے آپ نے اس کو عشاء کے ساتھ پڑھا، تو اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، مؤخر کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا نماز قصر کا بیان تقدیم اور تاخیر کے ساتھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.